खुदावंत के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब खुदा के हुजूर चुके हैं चंद लम्हों में, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने दिल को खुदावंत के सुपुर्द करेंगे, खुदावंत के हवाले करेंगे, खुदावंत को कहेंगे कि तू पाक रूह आ और हम सब पर अपना इख्तियार कर, ताकि हम जो कुछ सीखें हम सब की नसीहत और तरबियत का बायस हो। आए हम सब दुआ करें। खुदा बाप, हम सब तेरे बेटे और बेटियां इस जमीन पर इस वक्त हाजिर हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए। तो खुदा, हमारी हौसला अफजाई के लिए तू कलाम कर और जो कुछ सीखें हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इस तो पहले किसी खुदा का कलाम सीखना शुरू करिए, अभी अभी मैंने कैरी से बात किया तो कैरी मुझे कह रही थी कि सारे खानदान को, सारी बहनों को, बच्चों को, बड़ों को मेरी तरफ से सलाम कहना। खुदावन में आपकी सलामती हो। और कैरी बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रही है कि वो पाकिस्तान में आए और सबको देखे, सबसे मिले, सबके साथ सबके साथ बातचीत करे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था जाने से पहले कि मैं कैरी को जाके बताऊंगा कि सारे बहन भाइयों की ये ख्वाहिश है कि जब तू पाकिस्तान में आए तो हम तुझको लस्सी, पेड़े और दूसरी चीजें खिलाएंगे ताकि तू मोटी हो जाए। तो कैरी इस बात के लिए तैयार कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो इस बात के लिए बड़ी ही बेचैन है कि वो सबको आपको देखे। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी दुआओं के लिए वो बहुत शुक्रगुजार है। और खासकर भाई क्रिस, भाई ताहर, राजेश, राजू और दूसरे नौजवानों से मिलने के लिए। आए हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखें। इफ़सियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत से हम चंद एक बातें सीखेंगे। इफ़सियों पहला बाप उसकी 13वीं आयत में से चंद एक बातें, और मैं चाहूंगा कि ये आयत मेरे साथ आप पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। और हम ऐसा ही कोशिश करेंगे कि हर एक आयत, जब भी कलाम का कोई हिस्सा बयान किया जाए, उसमें से एक आयत आपको सिखाई जाए, ताकि आप जब घर को जाएं तो आपको कम से कम आधी आयत आनी चाहिए मुंह जबानी। यहां पर यूं लिखा है, पालूस कहता है, और उसी में हम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोहदे रूह की मोहर लगी। यहां पर जब हम अल्फाजों को देखते हैं इस खुदा के कलाम में जो बाइबल मुकद्दस है, एक एक लफ्ज बहुत गहरा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सब इस बात पर गौर करें। पालूस यहां पर कहता है, और उसी में हमको भी। हमने कल सीखा था और आज फिर आपकी याद दहानी के तौर पर कि लफ्ज उसी का यहां पर इसका मतलब है कि यीशु मसीह में जिसके लिए हमने कल चांद एक हवाला जात देखे थे, जैसे 22वीं और 21वीं आयत को हमने देखा था दूसरे बाब की, उसी में हर एक इमारत मिलकर खुदा में एक पाक मकदस बन जाता है। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें सिखाता है कि यीशु मसीह में हम का लफ्ज, यीशु मसीह में तुम पर यहाँ पर वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम जो ईमानदार हैं खुदा का खानदान हैं, खुदा के खानदान के लोग, आप सब के रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, चाची चाचा है, फूफा फूफी है, मामी मामू है, नानी नाना, दादी दादा, भाई, खाला जी के बेटे, खाला की बेटी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा खानदान है। लेकिन यहां पर पालूस रसूल खूनी रिश्ते की बात नहीं कर रहा, यहां पर पालूस रसूल रूहानी रिश्ते की बात कर रहा है, रूहानी रिश्ते की, रूहानी खानदान की बात कर रहा है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैरी ने कहा कि सारे खानदान को जो पाकिस्तान में है, इससे हरगिज मतलब नहीं कैरी, ये कैरी है कि सिर्फ मेरी अम्मी को या भाइयों को सलाम पहुंचे, नहीं, वो आप सब की तरफ इशारा कर रही है जो आप मसीह में ईमानदार हैं। सो हम सब क्या हैं? खानदान हैं। हम सब क्या हैं? एक घराने के लोग। हमारे दुनियावी रिश्ते भी हैं, खूनी रिश्ते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिश्ता हमारा क्या है? रूहानी रिश्ता है, खुदा के खानदान के लोग। इसके लिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि हम खुदा के खानदान के लोगों की अहमियत जानें। खुदा के खानदान के लोग होते हुए हमारा एक दूसरे के साथ कैसा तल्लक या बर्ताव होना चाहिए। तो मेरे साथ एक आयत को देखें इसी खत में से, इफिसियों 2:2 उसकी 19वीं आयत को देखें। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल याद दिलाता है और वाजिया करता है। तो गौर से सुने, पालूस कहता है, पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे। उसका कहने का मतलब है, पिछले ही बाप में वो सिखा रहा है कि पहले तुम खुदा के खानदान से दूर थे, मुसाफर थे, परदेसी थे, खुदा से अनजान थे, खुदा से दूर थे। लेकिन इस आयत में कहता है, पस अब तुम परदेसी और मुसाफर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन, मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। हमारा वतन आसमान पर है, इस जमीन पर हम आरजी तौर पर भेजे गए हैं, और ये जिंदगी, ये जमीन हमें इसलिए दी गई है कि जमीन पर रहते हुए उन तमाम मुश्किलात में, उन तमाम खुशी के लम्हों में, मुसीबतों में, परेशानियों में खुदा पर भरोसा करें। और आप बहुत अजीम बहने हैं, आप बहुत अजीम और मुकद्दस लोग हो, जो भाई हो, जो बुजुर्ग हो, जो बच्चे हो, आपकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। आपकी अहमियत खुदा की नजर में सोने चांदी के सिक्कों से कहीं ज्यादा है। आपकी अहमियत खुदा की नजर में उस हकीक पत्थर या फरोजा या हीरा जिसे कहते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा है। इसलिए हम क्या हैं? खुदा का खानदान। खुदा का खानदान एक दूसरे के क्या हैं? हम रिश्तेदार हैं। हमारा खूनी रिश्ता भी है, लेकिन सबसे बढ़कर रूहानी रिश्ता, खुदाई रिश्ता जिसे कहा गया है। इसलिए पालूस रसूल पहले बाब की 13वीं आयत में कहता है, और उसी में, यानी के और यीशु मसीह में तुम पर भी, तुम पर भी, यानी के तमाम तुम जो लोग हो, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, उस पर ईमान लाए, तो रूहुल कुद्दस की मोहर तुम पर लगी। रूहुल कुद्दस की मोहर इस बात की वजाहत करती है कि हम खुदा का खानदान है, उसके अलहदा किए हुए लोग। जैसे हमारे मकान है और हमारे मकानों के कागजात हमारे पास है, अगर कोई आके कहे कि आप इस मकान को खाली करो, तो हम मकान का क्या करेंगे कि कागजात निकाल कर दिखाएंगे कि भाई, बेटा और जो भी है, ये मकान मेरे नाम पर है, मैं इसका मालिक हूं, इसकी मालकिन हूं। इसी तरह खुदा हमारा मालिक है और रूहुल कुद्दस हम पर इसीलिए मोहर किया गया है। तो इसमें से हम बहुत कुछ सीखेंगे, इसमें बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो हमारी तरक्की के लिए हैं। सो लफ्ज खानदान, जैसे कि मकान और घर में फर्क है। मकान उसे कहा जाता है जो खाली होता है, घर उसे कहा जाता है जहां पर लोग बसते हैं। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, ये नहीं कहता कि तुम खुदा का मकान हो। मकान खाली होता है, मकान तब ही घर बनता है जब उसमें लोग बसते हैं। तो पालूस कहता है कि तुम खुदा के घराने के लोग हो, खुदा का खानदान। इसलिए यहां पर इस छोटी सी बस्ती में रहते हुए हमें एक दूसरे के दुख सुख मुसीबत परेशानी में मुश्किल हालात में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे की हौसला अफजाई, एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। और बहुत दफा हम खूनी रिश्ते को अहमियत देते हैं, लेकिन आज आपको खुदा के कलाम में से याद दिलाकर कहता हूं कि हम खुदा के घराने के लोग हैं और हम सब खानदान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे की फिक्र करने की जरूरत है। ना कि ये कोई बहन किसी बहन के पास जब जरूरत हो सब्जी लेने की, या जरूरत हो एक वक्त का आटा, या और कोई जरूरत हो तो लेने जाए तो उसे मेना या उसे कह दे कि मैंने क्या तेरा ठेका लिया हुआ है, बजाय इस बात के जरूरत है हमें एक दूसरे की जरूरियात में काम आने की। बेशक हमारे पास सब कुछ नहीं है, थोड़ा है, जो भी है खुदा का शुक्र है। खानदान का मतलब यह है कि रल मिलकर रहना, एक दूसरे की जरूरियात में, एक दूसरे की कमियों कमजोरियों में एक दूसरे के लिए फायदा मंद ठहरना। तो हम खुदा का खानदान हैं और उस खानदान में हम किस तरह शामिल हुए, जब हमने खुदा के कलाम को सुना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ऐसा खुदा का अल्हामी कलाम है जो हमें इस बात की सच्चाई के बारे में सिखाता है, इस सच्चाई के बारे में सिखाता है कि जैसे खुदा हमारी तरफ है वैसे हमें भी एक दूसरे की तरफ या हमदर्दी करनी चाहिए, क्योंकि तब ही दुनिया जानेगी कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, तब ही दुनिया जानेगी कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तब ही दुनिया जानेगी, तब ही दुनिया हम में और वो अपने आप में फर्क जानेगी कि हम में और तुम में क्या फर्क है, क्योंकि हम इस जमीन पर दुनिया का नूर हैं। लेकिन बहुत दफा हम तरीकी की जिंदगी गुजारते हैं, हम उस बादशाहों के बादशाह और शहनशाहों के शहनशाह, दुनिया जहां के मालिक, खुदा के घराने के लोग हैं, लेकिन बहुत दफा हम खुदा के लोगों की तरह जिंदगी नहीं गुजारते। इसलिए आपके लिए हौसला अफजाई है, बहनों तक, भाइयों तक, बच्चों तक खुदा के कलाम की जो पानी की नदियां जारी हैं, इसमें से सबको सैर होने की जरूरत है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हौसला अफजाई दे ताकि वो स्कूल में पढ़ें, और जब भी मौका मिले आकर जो बहनें पढ़ाती हैं उनकी हौसला अफजाई करें कि बहन शुक्रिया मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, बहन शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। उनको आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है, क्योंकि बच्चों को आप देख सकते हैं बहुत दफा बच्चे खपा देते हैं और मिसें उनसे तंग भी आ जाती हैं, बहुत दफा उकता भी जाती हैं। इसलिए वक्त निकाल के कभी ना कभी टीचरों के पास आए, उनसे कहें कि शुक्रिया हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारें, बच्चों से खुदा बाप के बारे में बात करें, यीशु मसीह के बारे में बात करें, ताकि हमारा खानदान मजबूत हो। इसीलिए पालूस रसूल कहता है कि तुम खुदा के घराने के लोग हो। और ये किस तरह हुआ, जब आपने यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी सुनी। کہ خدا انسان بنا جس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، جو خدا کی صورت پر تھا، جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خادم کی صورت میں پیش کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی تاکہ ہم اس کے خاندان کے لوگ ہو جائیں۔ سو آپ عظیم لوگ ہو، آپ خدا کے ایسے لوگ ہو، چنے ہوئے لوگ اس دنیا میں، روحانی طور پر مالا مال لوگ۔ بے شک دنیا سے نہیں دیکھ سکتی، بے شک بہت دفعہ ہم بھی اسے نہیں دیکھ سکتے اور محسوس نہیں کرتے۔ بہت دفعہ ہم ایوب نبی کی بیوی کی طرح بہت دفعہ بڑبڑاتے ہیں، خدا پر کہتے ہیں کہ تو نے ہمارا یہ چھین لیا، ہمیں یہ نقصان ہوا، وہ ہوا، لیکن اس کمی کمزوری کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج اس بات کو لے کر جائیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں اور آپ اپنے خدا باپ سے بات کر سکتے ہیں بڑی دلیری سے۔ اپنی ضروریات اسے بتائیں، اپنی کمیوں کمزوریاں اس کے حضور پیش کریں، مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ پوری کرے گا۔ تھوڑی دیر پہلے پاسٹر جین جو ابھی افریقہ میں گئے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں خبر ملی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی کچھ راستے میں، تو وہ راستہ بہت خطرناک تھا، اور دو گھنٹے بعد انہوں نے پھر فون کیا اور انہوں نے کہا کہ شکریہ آپ کی ساری دعاؤں کے لیے، ہماری گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، ہمیں رات گزر بسر کرنے کے لیے جگہ مل گئی ہے، اور جگہ جگہ پر وہ رکے، وہاں پر بہت سی زندگیوں کو بائبل مقدس سنانے کا ان کو موقع ملا۔ پاسٹر جین دنیا کے بہت سے علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کر کلام سناتے ہیں، اور دعا کریں وہ ہمارے پاس بھی آئیں گے، آپ کو بھی کلام سنائیں گے۔ ان کی بہت پیاری خوبصورت بیوی ہے جو بچوں میں اور بہنوں میں کام کرتی ہے، کلام سناتی ہے۔ آپ کی امید ہے اس سے، کیری سے اور اس کی بیوی سے ملاقات ہوگی جلد۔ اس لیے آپ جو خدا کا خاندان ہے یہاں پر، جتنے میرے چرچ کے، جیسے آپ اس چرچ کی کلیسیاں ہیں، ویسے یہاں پر جو چرچ کی کلیسیا ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو بہت پیار کرتی ہیں، وہ سلام دعا کہتے ہیں اور وہ جلد باپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اس ملک کے خاندانوں کو یاد رکھیں، بنی اسرائیل قوم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اس کے لیے برکت چاہیں، تاکہ جو کوئی بنی اسرائیل قوم کے لیے برکت چاہے گا خدا اسے برکت دے گا، اور یہی خاندان کا مقصد ہے۔ آئے ہم خدا کے حضور چکیں۔ خدا باپ، اس سارے خوبصورت خاندان کے لیے تیرا شکر ہو، ان کی محبت کے لیے تیرا شکر ہو کہ ہر صبح اٹھ کر تجھ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے اپنا آسمان کھول اور بڑی برکت دے، اور آج کے دن میں سب کو سنبھال۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ باقی کی ساری میٹنگ کو بھائی طاہر سنبھالیں گے۔